मैं सचिन कुमार, सामाजिक विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष मौलिक अधिकार चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह अधिकार राष्ट्र की मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में सामान्य विधि से संशोधन नहीं किया जाता। इनमें परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना होता है। यह मौलिक अधिक न्याय योग्य होते हैं अर्थात देश का कानून इन उत्तराधिकारों की रक्षा करता है जिसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर होता है। मौलिक अधिकारों का महत्व। यह लोकतंत्र के आधार तत्व हैं। व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास एवं प्रगति के लिए मौलिक अधिकार अनिवार्य हैं। इन अधिकारों के बिना सच्चे प्रजातंत्र के सिद्धांत लागू नहीं होते तथा व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा का अस्तित्व प्रभावी नहीं होता। मौलिक अधिकार व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करते हैं जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं एवं राजनीतिक उद्देश्यों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित होता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति एवं समुदाय विशेष को शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि राजनीतिक चेतना को जागृत करने में यह अधिक सहायक होते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया तथा इसे अब केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में निम्नलिखित 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हैं। प्रथम, समानता का अधिकार। द्वितीय, स्वतंत्रता का अधिकार। तृतीय, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चतुर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पंचम, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। षष्ठ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रथम, समानता का अधिकार। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता प्रदान करना अनिवार्य है। भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान में निम्नलिखित समानताएं प्रदान की गई हैं। प्रथम, कानून के समक्ष समानता। द्वितीय, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तृतीय, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। चतुर्थ, अस्पृश्यता का निषेध। पंचम, उपाधियों का निषेध। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की चर्चा करता है। ये अधिकार नागरिक तथा भारत भूमि पर रहने वाले किसी भी विदेशी को समान रूप से प्राप्त हैं। विधि के समक्ष समानता का आशय यह है कि विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे और एक जैसी विधियों से नियंत्रित होंगे, अर्थात भारत में दोहरी विधि प्रणाली प्रचलित नहीं है। ज्ञातव्य हो कि फ्रांस जैसे कुछ देशों में साधारण विधि और प्रशासनिक विधि की 2 श्रेणियां प्रचलित है। विधि के समान संरक्षण वाक्यांश का आशय यह है कि समान स्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, परंतु इस अधिकार के कतिपय अपवाद भी हैं। प्रथम, अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा किए गए किसी कृत्य के लिए उसे किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। द्वितीय, राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। तृतीय, विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या राजदूतों के विरुद्ध भारतीय विधि के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। उपर्युक्त समानताएं प्रदान करके प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की दृष्टि में बिना किसी भेदभाव के समान समझा गया। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्याप्त छुआछूत की बुराई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया, जिसमें छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया। ब्रिटिश काल में भारत में असमानता बनाए रखने के लिए संपत्ति आदि के आधार पर अनेक उपाधियां प्रदान की जाती थी। स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की उपाधियों को देना बंद कर दिया गया जिससे सभी नागरिक स्वयं को समान समझें, लेकिन बौद्धिक एवं शौर्य के लिए दी जाने वाली उपाधियों को प्रदान किया जाता रहा। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था रखी गई कि कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति के अनुमति के विदेशों से मिलने वाली उपाधियां ग्रहण नहीं करेगा। जनता पार्टी की सरकार बनने पर जुलाई 1970 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अलंकरण जैसे पद्मभूषण, पद्मश्री आदि बंद कर दिए, लेकिन 1980 में पुनः कांग्रेस का शासन होने पर यह अलंकरण दिए जाने लगे। 1993 के गणतंत्र दिवस पर यह अलंकरण पुनः किसी को प्रदान नहीं किया गया, जिसका कारण यह बताया गया है कि इसके संबंध में कुछ याचिकाएं न्यायालय के विचाराधीन थी, लेकिन इनका निवारण हो जाने के बाद यह पुनः दिए जाने लगे हैं। सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर होगा, लेकिन यदि संसद चाहे तो अधिनियम बनाकर कुछ विशेष शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। द्वितीय, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रारंभ में संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, अतः वर्तमान में नागरिकों को अग्रलिखित स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। प्रथम, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। द्वितीय, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तृतीय, समुदाय एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता। चतुर्थ, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। पंचम, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। षष्ठ, वृत्ति जीविका तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, प्रत्येक स्वतंत्रता पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। सरकार जिन आधारों पर इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है वह है राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना। 16वें संविधान संशोधन द्वारा यह भी जोर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भाग को पृथक करवाने के लिए प्रचार करे तो भी उसकी अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ति के माध्यम प्रेस को व्यवस्थापिका की कार्यवाही के प्रकाशन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन अन्यथा इसे सीमित किया जा सकता है। राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध विचरण एवं आवास की स्वतंत्रता पर जनता के हित एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हित में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। व्यापार एवं वृत्ति की स्वतंत्रता पर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, योग्यताएं निर्धारित कर सकती है तथा किसी भी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में भी ले सकती है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 19 में दी गई यह 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों के स्व विकास के लिए हैं, ना कि इनका नकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसलिए यह युक्तियुक्त निबंधन के अधीन है। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंड दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपराध में स्वयं को फंसाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार विशेष रूप से कार्यपालिका द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकार को और अधिक मान्यता प्रदान की गई है। इसे आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 59वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब में आपात स्थिति के समय राष्ट्रपति को इस अधिकार को निलंबित करने का अधिकार दिया गया था, जो कि 63वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वाक्यांश अपने से संविधान ने कानून को निश्चित करने का अंतिम अधिकार संसद को दे दिया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की उचित प्रक्रिया से भिन्न है। इसे अमेरिका में अपनाया गया है, जहां इसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत में न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए किसी भी कानून को उपयुक्तता पर इस आधार पर विचार नहीं कर सकती कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनुचित रूप से सीमित करती है। न्यायालय सिर्फ यह देख सकता है कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण तो नहीं किया। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक ले जाने की का समय सम्मिलित नहीं है, निकटतम न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है। यह अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, क, शत्रु देश के निवासियों तथा ख, निवारक निरोध अधिनियम के तहत बंदी बनाए गए विरोधियों को। निवारक निरोध। संविधान के में निवारक निरोध का उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की गई है। निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध किए जाने से रोकना है, अतः निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के बिना किसी अपराध किए जाने से पूर्व नजरबंद करना है। भारत में निवारक निरोध सदैव सामान्य काल और संकट काल दोनों में प्रभावी रहता है। निवारक निरोध एक प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्था है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को इस प्रत्याशा में गिरफ्तार किया जाता है कि उसे उसके संभावित कृत्यों से राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त वैदेशिक गतिविधि तथा प्रतिरक्षा से जुड़े मुद्दों के आधार पर भी उसे बंदी बनाया जा सकता है। निवारक निरोध साधारण निरोध से इस अर्थ में भिन्न है कि जहां साधारणतया किसी व्यक्ति को अपराध करने के उपरांत विधिवत विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करने के उपरांत ही बंदी बनाया जाता है, वहीं निवारक निरोध के किसी कानून के अंतर्गत संभावित अपराधी को बिना मुकदमा चलाए ही बंदी बनाया जा सकता है। संविधान के द्वारा निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के संदर्भ में भी कतिपय सुरक्षाओं का प्रावधान किया गया है। क, संबंधित व्यक्ति को यथाशीघ्र उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना चाहिए, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा न किया जाना राष्ट्रीय हित में हो। ख, संबंधित व्यक्ति को अपने बंदी बनाए जाने के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील करने का शीघ्रातिशीघ्र मौका दिया जाना चाहिए। ग, सामान्यतया निवारक निरोध विषय किसी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। पूर्व काल में यह अवधि 3 माह की थी, परंतु 1978 में पारित संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 2 माह कर दिया गया। यदि 2 माह के उपरांत भी सरकार उसे गिरफ्तार रखना चाहती है तो इसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य होगी। इस सलाहकारी बोर्ड में अध्यक्ष और न्यूनतम 2 सदस्य होंगे। सलाहकारी बोर्ड का अध्यक्ष संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का पदासीन न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य किसी भी उच्च न्यायालय के पीठासीन अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे। तृतीय, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नागरिकों को उनका शोषण रोकने के लिए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। बेगार का अंत। मानव का दुर्व्यवहार तथा बेगार एवं इसी प्रकार के जबरन श्रम कराए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। राज्य इस सेवा में धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। द्वितीय, बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त दोनों अधिकार व्यक्ति को दैहिक श्रम के शोषण से बचाव प्रदान करते हैं तथा सामाजिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। चतुर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में विभिन्न धर्मों एवं मतों को मानने वाले व्यक्तियों को धार्मिक संरक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रथम, अंतःकरण की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, किसी भी धर्म को मानने एवं उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी। द्वितीय, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तृतीय, धार्मिक संस्थाओं के अथवा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। चतुर्थ, चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार। पंचम, उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करना। षष्ठ, राजकीय निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। उपर्युक्त धार्मिक स्वतंत्रताओं पर कुछ परिसीमाएं भी लगाई गई हैं। यह धार्मिक स्वतंत्रताएं लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हित में राज्य द्वारा सीमित की जा सकती है। यह सामाजिक सुधार, आर्थिक एवं लौकिक क्रिया आदि से संबंधित विधान के अधीन है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कर्मकांड और उत्सव आयोजित करने की छूट है, लेकिन न्यायालय को यह अधिकार है कि कोई विशेष कर्मकांड या पूजा की विधि उस धर्म की मान्यताओं के अनुसार आवश्यक है या नहीं का निर्णय करे। यदि कोई विशेष कर्मकांड या पूजा विधि किसी सामाजिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक विनिमयन करने वाली विधि का उल्लंघन करती है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। धर्म के प्रचार के अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का जबरन या छल कपट, लोभ या फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। वह स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। यदि धर्म परिवर्तन लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के विरुद्ध है तो राज्य को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार है। पंचम, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संस्थानों को ध्यान में रखकर प्रत्येक व्यक्ति को एवं प्रत्येक वर्ग को क अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, अर्थात उन पर कोई भी अन्य संस्कृति नहीं थोपी जाएगी। ख, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं चलाने का अधिकार है। राज्य इन संस्थाओं को अनुदान देते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यदि राज्य किसी शिक्षण संस्था की संपत्ति का अर्जन करता है तो उसे समुचित एवं पूर्ण मुआवजा देना होगा। इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को लेकर कोई भेदभाव नहीं अपनाया जाना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका संचालन करने एवं संपत्ति को बनाए रखने का अधिकार आज भी बना हुआ है। उपर्युक्त उपबंधों का अल्पसंख्यक अतिरिक्त लाभ उठाने का प्रयास करते रहे हैं तथा समानता के स्थान पर बहुत अधिक मांग करने लगे हैं। सरकार भी उनके वोट प्राप्त करने के लिए इन्हें बढ़ावा देती रही है। यह प्रवृत्ति भारतीय संविधान के उद्देश्य की अवहेलना करती है। दुर्गादास बसु के अनुसार यदि सरकार आक्रामक अल्पसंख्यकों की मांगों की तुष्टि करने के लिए बहुसंख्यकों के धार्मिक तथा अन्य विधिक अधिकारों का दमन करती है तो पंथ निरपेक्षता का, जिसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति राज्य की तटस्थता का उल्लंघन होगा। षष्ठ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों का महत्व तभी होता है जब उनके प्रवर्तन के लिए कोई शक्ति कार्य करे। सभी देशों के संविधान में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। भारतीय संविधान में भी यह कार्य न्यायपालिका को दिया गया है। क, न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि कार्यपालिका तथा विधायिका के ऐसे कार्य को जो इन अधिकारों को पूर्ण ढंग से अयुक्ति और प्रभावी या छीन करता है तो वह उस विधि का आदेश को शून्य घोषित करे। ख, उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, न्यायपालिका राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसे अधिकारों के प्रवष्टता के लिए परमाधिकार, रिटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 उन प्राविधियों से संबंधित है जो नागरिक को उनके मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में उपलब्ध है। इस प्रकार की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत निम्नांकित 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। प्रथम, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह लेख वैयक्तिक स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे बंदी बनाने के समुचित कारण है अथवा नहीं, और यदि समुचित कारण नहीं है तो न्यायालय उसे रिहा करने का आदेश दे सकता है। द्वितीय, परमादेश। यह लेख न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह न किया जा रहा हो। इस प्रकार का आदेश न केवल व्यक्तियों एवं संस्थाओं वरन सरकार और नीचे के न्यायालय के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तृतीय, प्रतिषेध। प्रतिषेध एक प्रकार का आदेश है जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। इसके तहत अधीनस्थ न्यायालय को उन कार्यों को करने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है जो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। चतुर्थ, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का लेख भी उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण के लेख में मुख्य अंतर यह है कि जहां प्रतिषेध का लेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, जबकि उत्प्रेषण का लेख उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले में निर्णय दिया जा चुका है। पंचम, अधिकार परीक्षा। यह लेख न्यायालय द्वारा उस सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके बारे में यह संशय हो कि उसने कोई सार्वजनिक पद अवैधानिक रूप से ग्रहण किया है, और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसका दावा पूर्णतया अवैधानिक है तो उसे अपदस्थ कर देता है। शर्त यह है कि संबंधित पद सार्वजनिक होना चाहिए और संविधान या विधि द्वारा सृजित होना चाहिए। अनुच्छेद 32 के अधीन उपर्युक्त कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, अन्यथा नहीं। संवैधानिक उपचार क्योंकि एक मौलिक अधिकार है, इसलिए न्यायालय इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकता। संवैधानिक उपचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना है। उनके अनुसार यह संविधान का हृदय एवं आत्मा है। मौलिक अधिकार एवं सशस्त्र बल। प्रथम, संसद को सशस्त्र बलों अथवा पुलिस बलों में अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन की सुनिश्चितता को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है। द्वितीय, संसद किसी क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर उस समय किसी अधिकारी द्वारा व्यवस्था की स्थापना के लिए दिए गए किसी दंड को या कार्य को जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है विधिमान्य ठहरा सकती है। आपात की उद्घोषणा तथा मौलिक अधिकार। सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने पर नागरिकों को मौलिक अधिकार विशेष रूप से अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं। यदि राष्ट्रपति द्वारा यह आदेश निकाला जाता है कि इन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में भी नहीं जाया जा सकता तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी निलंबित हो जाता है, किंतु अनुच्छेद 20 तथा 21 इस अवधि में भी निलंबित नहीं होते। मौलिक अधिकारों के अपवाद। प्रथम, अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ग अनुच्छेद 14 तथा 19 में दिए गए मूल अधिकारों के अपवाद हैं, अर्थात अनुच्छेद 31 क कृषि सुधार के लिए विधि अथवा अनुच्छेद 31 ग संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधि से संबंधित विधि को न्यायालय इस आधार पर निरस्त नहीं कर सकता कि वह अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताएं द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। यदि कोई अधिनियम नवी सूची में सम्मिलित किया गया है जिसको अनुच्छेद 31 ख के साथ पढ़ा जाएगा तो उसे इस आधार पर निरस्त घोषित नहीं किया जा सकता कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। मौलिक अधिकार संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार के संबंध में संसद तथा सर्वोच्च न्यायालय के मध्य विवाद होता रहा है। मुख्य प्रश्न यह रहा है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है या नहीं, तथा सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में बनाए गए कानूनों के अवलोकन का अधिकार है या नहीं। इस संबंध में कुछ संविधान संशोधन किए गए हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। वर्तमान में अंततः यह व्यवस्था मान्य है कि संसद द्वारा संविधान के सभी भागों में जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित है अनुच्छेद 368 में वर्णित विधि के अनुसार पारित संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय ने आधारभूत लक्षण का एक सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह संविधान के आधारिक लक्षणों का उल्लंघन करने वाले संशोधनों को अविधिमान्य घोषित कर सकती है, किंतु अभी तक यह अंतिम विनिश्चय नहीं हो सका है कि आधारभूत लक्षण क्या है। मौलिक अधिकारों का महत्व। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का महत्व निम्नलिखित है। प्रथम, मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करती है। द्वितीय, मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं। तृतीय, मौलिक अधिकार कानून का शासन स्थापित करते हैं। चतुर्थ, मौलिक अधिकार सामाजिक समानता स्थापित करते हैं। पंचम, मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्ष राज्य के आधार हैं। षष्ठ, मौलिक अधिकार कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सप्तम, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। अष्टम, मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। मौलिक कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ केवल मूल अधिकारों को ही सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में उल्लिखित नहीं थे। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 क भाग 4 में जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 29 मई 1976 को नई दिल्ली में अपनी बैठक में संविधान में जो ऐतिहासिक कमी रह गई है उस संबंध में एक प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष द्वारा संवैधानिक सुधार पर गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति से अपनी राय देने के लिए कहा। इस समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को समावेश करने की संस्तुति की जिसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य। प्रथम, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तृतीय, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे। चतुर्थ, देश की रक्षा करे। पंचम, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। षष्ठ, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सप्तम, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। अष्टम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नवम, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। दसम, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। बिना कर्तव्यों के मौलिक अधिकारों का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि नागरिकों को भी देश के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, तभी वह मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन इन कर्तव्यों की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। प्रथम, मौलिक कर्तव्य अत्यधिक स्पष्ट नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि इनका क्या अर्थ है तथा नागरिक को क्या करना चाहिए। द्वितीय, मौलिक कर्तव्यों की पुनरावृत्ति की गई है। तृतीय, सर्वाधिक आलोचना यह की जाती है कि जिस प्रकार मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किया जाता है उस प्रकार मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। नागरिकों को ऐसा करना चाहिए और यदि नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो क्या होना चाहिए, इस संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि जब तक इस संबंध में किसी कठिन दंड की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक यह मौलिक कर्तव्य प्रभावी नहीं हो सकते। अध्याय समाप्त।